ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ ನಮೋ ಅರ್ಹಂತಾಣ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ ನಮೋ ವೈರ್ಯಾಣ ನಮೋ ಉವಜಾಯಾಣ ನಮೋ ಚತ್ತಾರಿ ಮಂಗಲಂ ಅರ್ಹಂತ ಮಂಗಲಂ ಸಿದ್ಧ ಮಂಗಲಂ ಸಾಹು ಮಂಗಲಂ ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತು ಧಮ್ಮೋ ಮಂಗಲಂ ಚತ್ತಾರಿ ಲೋಗುತ್ತಮ ಅರ್ಹಂತ ಲೋಗುತ್ತಮ ಸಿದ್ಧ ಲೋಗುತ್ತಮ ಸಾಹು ಲೋಗುತ್ತಮ ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತೋ ಧಮ್ಮೋ ಲೋಗುತ್ತಮ ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಅರ್ಹಂತ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಸಿದ್ಧ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಸಾಹು ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತು ಧಮ್ಮೋ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ. नमोकार मंत्र का जो शब्दात्मक गठन है, अर्थात नमोकार की जो अक्षर संरचना है, उसको एक बार समझ लेना आवश्यक है. अपन सब जानते हैं कि नमोकार में 35 अक्षर हैं. वो 35 अक्षर कैसे हैं, इसकी गणना अगर अपन करें तो अक्षर गणना का जो एक क्रम है, उससे अपरिचित जन असमंजस में पड़ जाएंगे कि 35 अक्षर कैसे हो सकते हैं. नमोकार मंत्र के 35 अक्षर गिनकर देखें अपन, तो आश्चर्य होगा कि कैसे 35 अक्षर बन रहे हैं इसमें. उसका हम आपको एक प्रयोग बता रहे हैं. आज आप लोग सब लोग सीख जाएंगे अक्षरों की गणना. यदि आप सावधानी से सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे. देखिए, नमो अरिहंताणम अथवा नमो अरहंताणम दोनों पाठ हैं. श्वेतांबर शास्त्रों में नमो अरुहंताणम पाठ भी है और उसमें दिगंबर श्वेतांबर सिद्धांत से कोई आपत्ति नहीं है. तो हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके जो गुरु थे दीक्षा शिक्षा गुरु, वो पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी थे. और ज्ञान सागर महाराज जी जब मंगलाचरण करते थे तो 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ते थे और तीनों बार अलग अलग पढ़ते थे. नमो अरिहंताणम एक बार, फिर दूसरे बार में नमो अरहंताणम, फिर तीसरी बार में नमो अरुहंताणम, तीनों पाठ करते थे. थोड़ा स्प्रेड हो जाना. हमें दूरी चाहिए. नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और नमो अरुहंताणम, तीनों पाठ। तो इसमें अपन गणना करते हैं। यहां तो अपन अक्षरों को बड़ी सरलता से गिन रहे हैं, लेकिन अंतिम दो पदों में या फिर दूसरे पद में भी थोड़ी कठिनाई आती है। जैसे णमो, ये दो अक्षर हैं। पहली बात तो ये है कि अक्षर की परिभाषा क्या है, ये अपन समझ लें। स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन को अक्षर कहते हैं और अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है? इतना अपने को स्मरण में रखना है। तो णमो अरिहंताणम, देखिए कितने हुए इसमें अक्षर। एक सीधा सा हिसाब है कि जितने स्वर होते हैं उतने ही अक्षर होते हैं। कहीं भी किसी भी शब्द में अपन अक्षर गिनना चाहें तो उसमें जितने स्वर होंगे ना उतने ही अक्षर होंगे। व्यंजन कितने भी क्यों ना हो, व्यंजन रहित स्वर भी एक अक्षर है अपने आप में और व्यंजन मिलित स्वर भी अक्षर है और एक से अधिक व्यंजन मिलित स्वर भी अक्षर है, ठीक है? तो णमो इसमें क्या हुआ, ण हलंत न यानी व्यंजन न, ण उसमें अपन ने अ जोड़ा हुआ है तब वो ण बना है। ण हलंत में अ जोड़ेंगे तो ण बनेगा, फिर म हलंत में ओ जोड़ेंगे तो मो बनेगा। तो णमो दो अक्षर हो गए। फिर अ अपने आप में स्वर है और अक्षर है ही है। फिर र में ह्रस्व इकार जोड़ा गया है, इमली वाला, इति वाला, इत्यादि वाला। तो र में ह्रस्व इकार जोड़ने पर क्या हुआ, री। तो णमो अ री। फिर ह में अनुस्वार है हन, फिर त में आ की मात्रा है तो त हलंत में आ जोड़ने पर ता बना है। फिर णम, ण में पुनः अनुस्वार है। तो कितने अक्षर हुए ये, णमो अरि हंता णम, सात अक्षर हो गए। इसके बाद णमो पुनः, अब णमो को तो अपन एक बार देख चुके हैं तो जहां भी णमो मिले तो समझ लेना दो अक्षर है, ठीक है? नमो, फिर सिद्धाणम। अब स में ह्रस्व इकार है तो सी हुआ और उसके उपरांत द के नीचे ध है। अभी जो नमोकार मंत्र अपने को कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलता है उसमें यहां त्रुटि पाई जाती है। क्या कर देते हैं, स में ई की मात्रा लिखी उसके बाद में ध लिख दिया, ध लिखा लेकिन ध का डंडा ना बना करके फिर दा लिख दिया उसमें, तो वो अशुद्ध है, वो लेखन शुद्ध नहीं है क्योंकि उसका उच्चारण क्या होगा, सिद्ध दानम, ये उच्चारण होगा। तो सिद्ध दानम नहीं है, द पूर्ववर्ती है, ध पश्चातवर्ती है, समझ में आ रहा है ना? तो पश्चातवर्ती ध लिखने का तरीका क्या है, स में ह्रस्व इकार फिर द लिखिए पूरा और द में नीचे की ओर जैसे द्वार में व लिखते हैं वैसे ही नीचे की ओर ध लिख दीजिए, डंडा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ने में उसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे द्वार पढ़ते हैं तो द पहले पढ़ते हैं कि नहीं और वा बाद में पढ़ते हैं, वैसे यहां पर सिद्ध और धारणम ये ध में आ की मात्रा पढ़ी जाएगी, ठीक है? तो उच्चारण करते समय जो स में ई की मात्रा है उस ई का द के साथ आघात होगा, क्योंकि ह्रस्व है। ह्रस्व स्वरों का संयुक्ताक्षर के प्रथम व्यंजन के साथ आघात होता है, तो वहां पर दो व्यंजन है ना, द और ध, फिर स्वर आता है आ, तो सिद्ध ये द के साथ ई की मात्रा टकराएगी बोलते समय। कैसे टकराएगी? लिखने में कैसे लिखने में कोई टक्कर नहीं मारेगा, लेकिन बोलते समय सिद्ध, ये है उसका उच्चारण, सिद्धाणम, ये उसका उच्चारण हो गया। ठीक है, अब गिनती करिए अपन कितने अक्षर हो रहे हैं। नमो के दो, सिद्ध धा णम, एक दो तीन। इसको सिलेबल बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉवेल स्वर को बोलते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन को बोलते हैं, और सिलेबल जो है अक्षर को बोलते हैं, लेटर्स भी बोलते हैं। अब लेटर्स में तो सभी आ जाते हैं, स्वर व्यंजन अक्षर सब आ जाते हैं। अब यहां देखिएगा, नमो सिद्धाणम, पांच हो गए, नमो एक दो, सिद्धाणम एक दो तीन, दो और तीन पांच। अब 35 अक्षर अपने को गिनने हैं ना। अब जो तीसरा पद है वो भी सरल है, नमो आ इरियाणम, श्वेतांबर बंधुओं में इसका पाठ नमो आ यरियाणम है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल स्वर और व्यंजन का भेद है, आ यरियाणम आ इरियाणम। कितने अक्षर हो रहे हैं? नमो दो, आ ई रि या णम, एक दो तीन चार पांच, सात अक्षर हो गए, दो और पांच सात। अब आता है नमो उवज्झायाण, यहां क्या करेंगे? नमो दो ही अक्षर है, उ एक अक्षर है, व दूसरा अक्षर है, फिर आधा ज और फिर झ, झरने का उवज्झा, तो व जो है उसमें अ मिला हुआ है, व प्लस अ, तो व बन गया उ व। फिर उसके बाद ये संयुक्ताक्षर आ गया। संयुक्ताक्षर का अर्थ ये होता है कि जिस अक्षर में एक से अधिक व्यंजन संयुक्त हो, जुड़े हो, मिले हो। अब इसमें ज भी है और झ भी है, दो व्यंजन है, तो संयुक्ताक्षर हो गया। जैसे सिद्धाणम में द और ध दोनों थे, एक से अधिक व्यंजन होना आवश्यक है संयुक्ताक्षर के लिए। तो अब उच्चारण कैसा करेंगे? अपन करते ही आ रहे हैं इसलिए अपने को मालूम ही है, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से, उ व, ये व में जो अ है ह्रस्व है, और उसका आघात जिसको स्वराघात कहते हैं ज के साथ होगा, उ व, और फिर झायाणम उवज्झायाणम, ये उसका उच्चारण होगा। ठीक है, सरल है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम। पहले हम जब नए नए सीखा था नमोकार मंत्र, अब हमारे जीवन में तो क्या हुआ कि कॉलेज टाइम में ये सब बदलाव आया, और नमोकार मंत्र हमने पहली बार जब हम फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे तब सीखा, उवज्झायाणम, उवज्झायाणम 1982 में। तो आप लोग उम्र में हमसे बड़े हैं कई लोग। नमो उवज्जायाणम, इसमें हम क्या बोलते थे, झ्यायाणम बोलते थे, झ में और एक य मिला देते थे, उवज्जायाणम। और फिर हमने ये पाया है कि बहुत सारे जैनी बंधु उवज्जायाणम बोलते हैं, लेकिन झ में य नहीं मिलाना, सीधा झा बोलना है, झापड़ का झा। नमो उवज्जायाणम, ये हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, न प्लस अ प्लस म प्लस ओ प्लस उ प्लस व प्लस अ प्लस ज प्लस झ प्लस आ प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अम, ऐसे जोड़ते जाएंगे, नमो उवज्जायाणम, ये उच्चारण। फिर नमो लोए, अब देखिएगा यहां पर एक ध्यान में रखने की बात है, आपको पता है नमोकार मंत्र में 5 पद है, सबको पता है, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर है, ये भी सबको पता है, लेकिन नमोकार मंत्र में मात्राएं कितनी है, कोई बताएगा? उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, और संगीत में जो होता है वो ताल के काल को मात्रा कहते हैं। तो यहां नमोकार में जो अपने उच्चारण, अपना जो उच्चारण काल है उसको मात्रा कहते हैं। कम समय में उच्चारण हो जाए तो 1 मात्रा, अधिक समय में उच्चारण हो, उससे दुगने समय में उच्चारण हो तो 2 मात्रा, और उससे भी अधिक समय में उच्चारण हो तो फिर उसको प्लुत कहते हैं, प्लुत की और अधिक होती है स्थिति। तो अभी उसकी बात नहीं चल रही, यहां पर अपन ये देख रहे हैं कि नमोकार में कितनी मात्रा है। अभी हमने सुना कि 58 है, कोई कह रहा था 58 मात्रा है, तो ये अपन ने पढ़ा है कि 58 मात्रा है, और ये बात बहुत लोग रटे हुए हैं कि नमोकार मंत्र 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा होती है। तो अब देखिए 58 मात्राओं की गणना कैसे करेंगे, ये आज आपको सीखना है ना, और इतने अच्छी तरह से सीखना है कि जीवन भर के लिए आपकी एक निधि हो जाए, आपके पास ये डिपॉजिट हो जाए। हाँ, तो नमो लोए, कातंत्र संस्कृत व्याकरण में आचार्य शर्ववर्म देव ने एक सूत्र लिखा है, नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि ए ऐ ओ औ, स्वरों में ये 4 स्वर ऐसे हैं जो संध्यक्षर के रूप में वैयाकरणों ने स्वीकार किए हैं। संध्यक्षर का अर्थ होता है यहां पर 2 स्वरों को मिलाकर बने हुए हैं ये, एक ऐसे बना है अ अथवा आ में ई मिला दें, वो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ अथवा आ में ई अथवा ई मिला दें तो ए बनता है। और ऐ कैसे बनता है, व्याकरण वालों ने पढ़ा होगा, पता ही है। देखो व्याकरण के सूत्र से हम बता रहे हैं आपको, एक ज्ञानवती माता जी वाला कातंत्र व्याकरण है और एक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो वाला है, तो अभी हमारे पास दोनों हैं। इसके 9वें सूत्र में लिखा है एकारादीनि संध्यक्षराणि नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि ए ऐ ओ औ, ये संध्यक्षर हैं और संध्यक्षर नित्य ही दीर्घ होते हैं। दीर्घ होते हैं का अर्थ है कि दो मात्राओं में उनका उच्चारण किया जाता है ए ऐ ओ औ। अब इसमें ऐसा नहीं समझना कि ए छोटा है और ऐ बड़ा है, ओ छोटा है और औ बड़ा है, ऐसा नहीं समझना। चारों बराबर है, ए ऐ ओ औ।
गुरुदेव आवाज उधर से अनम्यूट कर लीजिए।
तो इनको यहां दीर्घ कहा गया है, लेकिन व्याकरण में कदाचित इनका ह्रस्व रूप में भी प्रयोग होता है। कदाचित होता है किसी समय, कभी। तो ये एक विशेष जानकारी की बात है। जैसे कौमुदी व्याकरण में बताया है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास बैठे हैं, तब अर्जुन जब उनसे वार्तालाप करेगा तो वो कृष्ण जी का जो भी नाम लेगा, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, अच्युत भी एक नाम है, तो वो जो संबोधन सूचक अव्यय होते हैं, हे कृष्ण, भो कृष्ण, इस प्रकार इनको हे ओ, इनको दो मात्राओं में उच्चारित न करके एक मात्रा में उच्चारित करेगा, वो अच्युत ऐसा संबोधन करेगा। ये उदाहरण दिया हुआ है कौमुदी में, वो अच्युत। भो का उच्चारण भो ऐसा नहीं किया, दो मात्रा में, एक मात्रा में किया। हे राम, हे राम, थोड़ी दूर है तो हे राम, हे कृष्ण, हे जिनेंद्र, एकदम निकट है, हे जिनेंद्र, भुजिनेंद्र, एकदम शॉर्ट में बोलेंगे। तो यहां नमोकार मंत्र में लोए वाला जो ए है उसका उच्चारण ए नहीं है, ए है, लोए। ये बहुत महत्व की जानकारी थी, और यदि ऐसा स्वीकार नहीं किया जाए तो नमोकार मंत्र की मात्राएं 59 हो जाएगी, 58 नहीं रहेगी। और वो कैसे, तो हम आपको गणना की प्रक्रिया बताते हैं कि गिनती कैसे करेंगे अपन मात्राओं की। बच्चे अगर सुन रहे हो तो उनको बड़ा आनंद आएगा, और बड़े सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी आनंद आएगा। तो नमो लोए सव साहूणम। अब सव साहूणम, यहां पर व दो बार है तो कितने अक्षर गिने जाएंगे? तो उसका उत्तर है कि अक्षर तो उतने ही गिने जाएंगे जितने स्वर हैं। तो अगर आधा व है तो आधे व में कोई स्वर नहीं है, तो उसको अलग से अक्षर नहीं गिना जाएगा। भले ही पुराने कवियों ने व्यंजनन चार्धमात्रकम, कातंत्र रूपमाला में भी व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा है, तो कहीं किसी अपेक्षा भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन जब अक्षरों की गणना करने अपन बैठते हैं ना, तो वो आधी मात्रा वाला जो व्यंजन है उसको भिन्न अक्षर न गिन करके जिसके साथ वो संबंधित है उसी रूप, जैसे सम्यक। अब सम्यक में क्या है, म्यक इसमें क आधा है, समझ रहे ना, सम्यक में क हलंत है, तो वो उसको अपन सम्यक को अपन ढाई अक्षर नहीं गिनेंगे, सम यक दो ही अक्षर गिनेंगे। अक्षरों की गणना में ये नियम है। अब इसमें एक बात और है जो हम बता रहे थे कि पुराने कवियों ने कहीं कहीं पर उसको ढाई अक्षर के रूप में गिना हुआ, और बड़ा प्रसिद्ध एक दोहा है, आप सब जानते हैं, सबको रटा हुआ है, स्कूल में पढ़ते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। देखिए इस छंद में बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं। हम सोचते हैं कि कोई अगर छंद शास्त्र सीखना चाहता हो तो व्यवस्थित छंद शास्त्र भी सीख सकता है। हमने कई लोगों को इसका भी अध्यापन, उसका अध्यापन किया है कई लोगों के लिए। तो देखिए इसमें क्या विशेषता है, उन्होंने प्रेम में ढाई अक्षर कर दिए। कैसे किए, प आधा था, फिर रे एक, म दो, तो प्रेम ढाई अक्षर कर दिए। यहां पर अक्षर गणना में, व्याकरण में, संस्कृत में ये क्रम नहीं चलता, उसको ढाई नहीं गिना जाता, दो ही गिना जाता है। तो सिद्ध शब्द में दो ही अक्षर है, ढाई अक्षर नहीं है। वो जहां पर भी व्यंजन अधूरा, सम्यक शब्द में भी वही स्थिति है, नहीं तो सम्यक शब्द में आपको तीन गिनना पड़ेंगे, क्योंकि सम में म आधा है और फिर वहां क आधा है, तो आधा और आधा एक हो जाएगा, और स और य दो हो जाएंगे, तो दो और एक तीन अक्षर हो जाएंगे, लेकिन तीन अक्षर नहीं होते, दो ही अक्षर होते हैं। तो नमो लोई सव, सव में दो ही अक्षर है, साहूणम। अब देखिए क्या स्थिति बनी, नमो उवज्झायाणम, नमो दो, उवज फिर दो, झायाणम ये तीन, तो दो दो और तीन सात हो गए, तो सात अक्षर वाले तीन पद हैं नमोकार में, पहला तीसरा और चौथा, ये तीन पद सात सात अक्षरों के हैं, और अंतिम पद जो है नमो लोए सव साहूणम, कितने अक्षर हो रहे, नमो के दो, लोए के दो, सव के दो, दो 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 छह हो गए, फिर साहूणम एक दो तीन, तो छह और तीन नौ अक्षर हो गए। अब गिनती लगाइए, नमो सिद्धांत में पांच अक्षर है, बाकी तीन में सात सात अक्षर है, तो सात या इक्कीस हो गए, इक्कीस में पांच जोड़ दीजिए छब्बीस हो गए, और नौ जोड़ दीजिए छब्बीस में पैंतीस, और अगर आप क्रम से ही जोड़ना चाहते हैं तो फिर सात और पांच बारह, बारह और पांच सत्रह, सत्रह और पांच बाईस, बाईस और नौ, बाईस और नौ है कितने हो रहे हैं, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है, नमो अरिहंताणम सात, सात में पांच बारह, बारह में सात उन्नीस, उन्नीस में सात छब्बीस, और छब्बीस में नौ पैंतीस, पैंतीस अक्षर गिनना आ गया आपको। अब आप अपने नाम के कितने अक्षर है वो जोड़ लीजिए, अपने अपने नाम के, हमें मत बताना नहीं तो फिर बहुत सारी आवाजें हो जाएंगी, आपके नाम में कितने अक्षर है वो देख लीजिए, केवल नाम में, सरनेम मत जोड़ना, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी तो फिर ये सरल कार्य हो जाएगा। तो नमोकार मंत्र की व्याख्या में आज अपन अक्षरों की गणना, मात्राओं की गणना, पदों की गणना कर रहे हैं। और अपन ने देखा कि जितनी बार नमो आया है उतने पद हो गए हैं। तो नमो कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 बार आने से 5 पद हो गए। फिर अक्षरों की अपन ने गणना की तो उसमें 35 की संख्या आई। प्रथम पद में, तृतीय पद में और चतुर्थ पद में 7-7 अक्षर मिले। दूसरे पद में 5 अक्षर थे और अंतिम पद में 9 अक्षर थे। तो इस तरह नमो लोए सव्वसाहूणम। अब अपन मात्रा गिनते हैं। मात्रा गिनने की विद्या जो है आज अच्छी तरह समझ लेंगे। मात्रा जो है ना उसको अपन ऐसे गिनेंगे, ह्रस्व और दीर्घ करके न गिनते हुए लघु और गुरु करके गिनेंगे। ये बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनने की बात है। जैसे अपन ने लोए, लोए में ए जो है वो तो दीर्घ है, लेकिन उच्चारण अपन ने कैसा किया है? उसका उच्चारण अपन ने गुरु जैसा नहीं किया है, लघु जैसा किया है। इसलिए अपन मात्राओं की गणना करते समय लघु और गुरु इनका ध्यान रखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अब देखिए, लघु किसे कहते हैं? तो वही कातंत्र उपमाला में लिखा है, ह्रस्वम लघु। ह्रस्व को लघु कहते हैं, लेकिन कभी कभी ह्रस्व का उच्चारण गुरु जैसा भी हो जाता है। जैसे उदाहरण हम बताया आपको, अभी अपन भक्तावर पढ़ा है, भक्तावर का 7वां काव्य देखिए, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। इन चारों चरणों के अंतिम अक्षर पर ध्यान देना, सन्निबद्धम। धम गुरु है और दीर्घ भी है, गुरु है, ठीक है, अनुस्वार युक्त है, गुरु है। अभी दीर्घ को यहां अपन नहीं जोड़ते, अनुस्वार युक्त है, गुरु है। फिर दूसरी पंक्ति क्या है? पापं क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। भाजाम आ की मात्रा है, दीर्घ है और उसमें म भी है, तो 2 मात्रा हो गई, गुरु हो गया। तीसरी पंक्ति देखिए, आक्रांत लोक मलि नील मशेष मा शु। अब ये जो शु है इसमें ऊ की मात्रा कौन सी है, दीर्घ है या ह्रस्व है, उकार है या ऊकार है? उकार है ना। तो ये पद के अंत में आने के कारण, पद का अर्थ होता है छंद की एक पंक्ति, चरण भी कहते हैं उसको, उसके अंत में आने के कारण उसको वहां पर गुरु गिना जाएगा। ह्रस्व होते हुए भी वह गुरु माना जाएगा, ये नियम हो गया। और अंतिम पंक्ति क्या है? सूर्यांश भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं, मंधकारम। बस ये जो ह्रस्व उकार था वो वास्तव में ह्रस्व होते हुए भी गुरु की श्रेणी में आएगा, ये बताना था हमें। तो अब गुरु के 5 भेद होते हैं छंद शास्त्र में, नहीं तो फिर धर्म शास्त्र में तो गुरु के 5 भेद होते ही हैं, पंच गुरु, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु। अब आपसे कोई पूछे कि 5 गुरु कौन से होते हैं तो आप फट से बोल दोगे अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु। लेकिन जब आपको छंद शास्त्र में उत्तर देना होगा तब आपको अलग उत्तर देना होगा। कैसे? तो देखिए, सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्चयः। नहीं ये कातंत्र का नहीं, ये छंद शास्त्र का श्लोक है, इसका तीसरा चरण ऐसा है। सानुस्वारो विसर्गान्तो, इसका अर्थ करते जाते हैं और फिर तीसरा पद अपन ले लेंगे। सानुस्वारों का अर्थ होता है जिसके ऊपर अनुस्वार हो। ये नियम से समझ लेना कि अनुस्वार अगर है ऊपर तो फिर वो गुरु है। फिर जिसके साथ विसर्ग हैं, वो भी गुरु होता है। देखो श्लोक तो है हमारे सामने, हम पढ़ के बता दें। वृत्त रत्नाकर नाम का एक छंद शास्त्र है, तो उसमें ये श्लोक आता है। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय वापादान्ते वा पदांते, क्या हो गया, एक मिनट शुद्ध पाठ निकालते हैं। अब शुद्ध पाठ मिला, वृत्त रत्नाकर का 9वां छंद है। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय वा पादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुहु। गुरु को ग लिखा जाता है और लघु को ल लिखा जाता है। तो अब देखिए, जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार हो उसको गुरु समझ लेना और उसकी दो मात्रा गिनना, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रबिंदी है तो चंद्रबिंदी में ये जरूरी नहीं है कि आप दो गिनो, केवल अनुस्वार है तो दो मात्रा होगी, वो गुरु होगा, ठीक है। एक उदाहरण दें हम आपको चंद्रबिंदी वाला, जो गुरु नहीं है। संवार लो, संवार लो बोलते हैं, संभलो बोलते हैं, संवार लो। संवार लो में क्या होता है, स के ऊपर चंद्रबिंदी होती है, तो उसको संवार लो नहीं बोलते हैं, वो ज्यों का त्यों लघु रहता है, संवार लो। तो चंद्रबिंदी में गुरु का नियम नहीं होता, अनुस्वार में गुरु होता है। तो देखिए इसमें पांच जो भेद बताए उसमें सबसे पहला अनुस्वार से युक्त कोई भी अक्षर हो, विसर्गांतो जिस अक्षर के अंत में अर्थात बाद में, जैसे वृत्त रत्नाकर ये अंत में विसर्ग आ गया, तो जिस अक्षर के अंत में विसर्ग हो वो भी गुरु है, और गुरु है तो दो मात्रा होगी। इसके उपरांत क्या कह रहे हैं, दीर्घ हो, जो अक्षर दीर्घ है वो भी सामान्य नियमानुसार गुरु होगा, और क्वचित कदाचित जैसे लोए में वो लघु हो गया, दीर्घ होकर भी लघु हो गया, और निकटवर्ती संबोधन में भी वो लघु हो जाता है संबोधन, भो अच्युत हे जिनेन्द्र, एकदम शॉर्ट में बोलते हैं हे प्रभु। अब दूर है तो फिर हे प्रभु, हे को लंबा खींचते थोड़ा सा, वहां दीर्घ गुरु होता है। तो दीर्घ सारे के सारे गुरु होते हैं। अब युक्त परश्च यह, जो अक्षर दीर्घ से भिन्न है, क्योंकि दीर्घ को तो अलग से कह दिया। तीन प्रकार के गुरु अपन ने पढ़े, सबसे पहला अनुस्वार युक्त, दूसरा विसर्ग विसर्गांत, तीसरा दीर्घ। अब ये चौथा जो है वो दीर्घ से भिन्न अर्थात ह्रस्व, यदि युक्त परह उसके आगे दो संयोग व्यंजनों का योग हो तो उसको संयुक्त, सम उपसर्ग लगा देंगे तो संयुक्त हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो युक्त कहलाएगा। युक्त परह अगर किसी भी ह्रस्व अक्षर के पश्चात कोई संयुक्त अक्षर आ जाता है, जैसे विश्वास, विश्वास में क्या हुआ, वी ह्रस्व अक्षर है और उसके बाद श्वास, जो श्वा है वो संयुक्त अक्षर है, तो वी गुरु हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर वृत्त रत्नाकर में, ये कहा जा रहा है कि वी गुरु हो जाएगा, और गुरु हो जाएगा तो फिर उसका उच्चारण ह्रस्व नहीं किया जाएगा, उसका उच्चारण वी का जो ई है उस पर, उसमें स्वराघात करना होगा आपको। अब वी में जो ई है वो स्वर है, पक्की बात है, उस स्वर का किसके साथ आघात होगा, संयुक्त अक्षर के प्रथम व्यंजन के साथ आघात होगा। प्रथम व्यंजन क्या है श्वास में, श है या वह है, श है, तो विश्वास, ये उसका उच्चारण है। आप लोग करते हैं कि नहीं उच्चारण, और कुछ बुंदेलखंडी लोग भी मध्य भारत में, वो भले ही विश्वास को जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं वैसा उच्चारित नहीं करते, वो विश्वास बोलते हैं, हमें तुम पर विश्वास नहीं रहेगा वो, ऐसा बोलते हैं। तो विश्वास वहां पर भी व का व कर दिया है और श का स कर दिया, तो विश्वास नहीं रहेगा वो, ऐसा बोलते हैं। तो ये उच्चारण का एक तरीका है। सिद्धांत में सिद्ध, सी में सी जो है वो पहले ही बतला चुके हम, द से टकराएगा। इसी तरह आप और देखिए कितने सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे संयुक्त अक्षर के। और उदाहरण हम आपको देते हैं, उष्ण, उष्ण बोलते हैं ना आप, उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म। तो उष्ण का उच्चारण कैसा हुआ, श और ण संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर में जो पहला व्यंजन है उसके साथ ये ह्रस्व स्वर टकराएगा, उष्ण, उ टकरा रहा है ना, उष्ण, और फिर सप्रेम भेंट। जब रविंद्र जैन जी ने यशुदास और हेमलता जी के स्वर में भक्तामर गवाया था, संगीत उनका था, फिर गाया उन दोनों ने था, तब उस भक्तामर के प्रारंभ में जो संचालक थे कोई भी, उन्होंने बोला, वो राजश्री पिक्चर्स की ओर से उन्होंने निकाला था, भक्ति संगीत की विनम्र श्रृंखला में राजश्री पिक्चर्स की विनम्र भेंट। सप्रेम भेंट भी बोलते हैं, ये वहां पर विनम्र शब्द का प्रयोग किया, सप्रेम भेंट भी बोला जाता है। तो सप्रेम, प्र संयुक्त अक्षर है, उसमें प पहले आ रहा है, तो स का जो अ है उससे टकराता है, सप्रेम। नम्र, नम्र में जो न का अ है वो म्र के म से टकराता है, नम्र, इसको स्वराघात कहते हैं। और फिर ये संयुक्त आद्यम दीर्घम, ऐसे भी एक सूत्र आता है, अपन ने भक्तामर में बहुत बार इसका अभ्यास किया। वो भक्तामर आपने सुना है क्या, यशुदास हेमलता जी वाला, यदि न सुना हो तो उसका एक काव्य सुन लीजिए, अच्छा सुंदर गाया उन्होंने, और रविंद्र जैन जी ने उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया है। केवल एक दो स्थानों पर थोड़ा सा अंतर पड़ा है, लेकिन काफी शुद्ध गाया उन्होंने। ये देखिए, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। यहां दो, एक तो तीन स्वराघात है पहली पंक्ति में। भक्तामर भ में स्वराघात है, भक्तामर प्रणत रप प्रणत मौली मणि प्रभाणा णिप, ये भी ह्रस्व अक्षर है इसलिए स्वराघात वहां करना होगा। आगे प्रभाणाम के प्र में उसका आघात होगा, तो ये एक प्रक्रिया थी। तो ये युक्त परश्च यह, इसके बाद वा पादांते, अगर छंद के किसी पद के अंत में कोई ह्रस्व अक्षर आ जाए तो वो वा पादांत लिखा। वा मतलब आप उसको रसो भी रख सकते हैं, अथवा जिस छंद में अपेक्षित है गुरु अपेक्षित है तो आप उसको विकल्प से गुरु भी बना सकते हैं। जैसे बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, समझ में आया? ठ ये ह्रस्व है लेकिन फिर भी अपन उसको उच्चारित कैसे कर रहे हैं, गुरु के रूप में उच्चारित कर रहे हैं। तो ये पांच प्रकार के गुरु होते हैं। अब अपन नमोकार मंत्र की मात्राओं को गिनेंगे। नमो कितनी मात्रा हो रही है, देखिए ण की एक मात्रा, मो की दो मात्रा, नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि और दीर्घम गुरु, मो की दो मात्रा हो रही है, फिर अ की एक, री की एक, हं की ह पर अनुस्वार है। तो पांच प्रकार के गुरु में पहला भेद कौन सा था, जो अनुस्वार से युक्त गुरु है वो, तो दो मात्रा हो जाएगी। ता में आ दीर्घ है तो उसकी दो मात्रा हो जाएगी, णम में फिर अनुस्वार है तो दो मात्रा हो जाएगी। कितनी मात्राएं हुई नमो अरिहंताणम में, गिना किसी ने? बताइए कोई श्रोता, नमो और यंताणम में कितनी मात्रा हुई? अच्छा, वहां से बंद होगा उनका? तो सब लोग मौन है क्या? यहां से आवाज जारी? ये वॉल्यूम कम है। नहीं, आवाज बहुत कम आ रही है। स्पीकर ऑफ है। बोलिए, आज तो अपन छोटे बच्चे बनकर के सीख लेते हैं। ये क्या
जी गुरुदेव, सब लोग चैट में बता रहे हैं 11 मात्रा।
बिल्कुल सही बात है, 11 मात्रा एकदम सही है। अब नमो सिद्धाणम की मात्राएं गिने अपन, और कौन सा गुरु है ये भी देखें अपन, है ना। दो मात्रा जहां भी गिनो ना, तो 5 प्रकार के गुरु में से कौन से गुरु की 2 मात्रा गिन रहे हैं आप, ये भी देख लें, ठीक है ना। नमो सिद्धाणम, नमो तो फिक्स हो ही गया, 3 मात्रा है ना। अब सिद्धाणम में गिनिए, 3 प्रकार के गुरु हैं सिद्धाणम में। सी कौन सा गुरु है? संयुक्त अक्षर से पूर्ववर्ती है, ठीक है। धा कौन सा गुरु है? आ की मात्रा दीर्घ है। और णम कौन सा गुरु है? अनुस्वार युक्त, ठीक है। अब नमो आहिर्याणम निकालिए, णमो 3, फिर आ दीर्घ, ई रस्व, री रस्व मतलब लघु, री रस्व लघु है, फिर या दीर्घ, ऋणम अनुस्वार युक्त। कितने कितनी मात्रा हुई? नमो आ इरियाणम 11 हुई ना, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा हो गई। अब नमो उवज्जायाणम पर आइए, नमो 3, फिर उ रस्व स्वर है, लघु है, इसके आगे आप करेंगे। कर रहे हो आप लोग? कॉपी पेंसिल या स्लेट या कुछ भी है क्या साधन आपके पास? मोबाइल में भी करके देख सकते हैं। नहीं, 13 वाले फिर से गिन करके देख ले, और 11 वाले भी फिर से गिन करके देख ले, 12 वाले देख ले, तीनों एक बार जांच कर लें अपनी गणना की। ण की 1 मात्रा, मो की 2 मात्रा, उ की 1 मात्रा, ठीक है ना। उ ह्रस्व है इसलिए 1 मात्रा है, सिंपल बात है। अब इसके बाद की गिनी है कैसे हो रही है? व की कितनी मात्रा है? 1 है या 2?
1
कैसे है? क्योंकि वह ह्रस्व है, ठीक है ना। लेकिन ह्रस्व होने के बाद यदि सामने संयुक्त अक्षर आ जाए तो क्या होता है?
तो
गुरु हो जाता है ना। देखिए, नमो वज्जायण में अधिक समय ले रहे हैं लोग, सबको आ गई 12 मात्रा। नमो की 2, नमो की 3, उ की 1, व की 2, ठीक है ना, वो संयुक्त अक्षर से पूर्व है। फिर झा में कौन सी, कौन सा गुरु है झा में, आ की मात्रा दीर्घ। फिर या में भी आ की मात्रा दीर्घ गुरु है और णम में अनुस्वार युक्त है, प्राकृत में विसर्ग नहीं होते हैं, ये प्राकृत भाषा है णमोकार मंत्र की, ठीक है ना। फिर अंतिम पद है, अब यहां पर ध्यान देना है, अब इसको अपन एक बार गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हुई है अपनी। नमो अरिहंताणम में कितनी हुई थी, 11। तो 11 में नमो सिद्धाणम की मात्राएं जोड़िए, नमो सिद्धाणम में कितनी मात्रा थी, 9 थी क्या, 9 थी। तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगी। फिर नमो आहिर्याणम में कितनी मात्रा थी, 11 मात्रा थी। तो 20 और 11 31 हो गई। अब ये नमो उवज्झारणम की 12 और जोड़ लीजिए तो कितनी मात्रा हुई, 31 में 12 जोड़ रहे हैं, त्रेपन हुई, नहीं 31 में 12 जोड़ने से 43 हुई, 43 हुई, 43। अब आपको 58 लाना है, तो ये आंसर पहले से डिक्लेयर्ड है ना, 58 - 43 कितने हुए, 15 है ना। तब आपको 15 की गिनती करना है, कैसे करोगे वो हम देखना चाहते हैं, करिए। हाँ नहीं आप मत, अभी सबको करने दीजिए, चैट में आप लिख सकते हैं किसकी कितनी गिन रहे हैं आप। हो गई, सोलह आ रही है ना, 16 आ रही है, 15 कैसे हुई, 16 आ रही है ना, ये बात वही हम देखना चाहते थे कि कितने लोगों ने याद रखा। वैसे तो ए दीर्घ होता ही है, लेकिन यहां पर ए को लघु मानना है तो 15 हो जाएगी। कैसे होगी, नमो की 3, लोए की, लो में 2, ए में 1, ये 3 हो गई। फिर सव में स की कितनी मात्रा होगी, स गुरु है कि लघु है, हाँ स रस्व होते हुए भी उसके बाद में डबल अक्षर है, डबल व्यंजन है, इसलिए स को 2 गिनना होगा, गुरु हो गया। फिर व की कितनी है, व की 1, बहुत सुंदर। उसके बाद साहूणम, सा की कितनी, 2, क्योंकि गुरु है दीर्घ है, और हु में भी ऊ दीर्घ है, और फिर णम अनुस्वार युक्त है, तो ऐसी 15 मात्रा होगी। अब आप लोग सब अपने अपने नामों की मात्रा गिनना, अपने बच्चों के, रिश्तेदारों के और सबके नामों की मात्राएं गिनना, तो कल तक के आप एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, आज ही ट्रेंड हो जाएंगे। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृहे जिन नाथ महं यजे, जिन गृहे जिन शास्त्र महं यजे, जिन गृहे मुनिराज महं यजे। ओम ह्रीं ओम ह्रूं ओम ह्रौं ओम रह। देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।